रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में दो गौरैयां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत जिसके बोल हैं, हे प्रभु तेरे सामने में आ गया कैसे। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
कोई चला जैसे कोई तो फते
अभी आपने सुना यह मधुर गीत जिसके बोल थे हे प्रभु तेरे सामने में आ गया कैसे। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास ईशा की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का, तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत, तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।
साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का हमारा जो विषय है वो है युवा भारत। जी हाँ, आजकल यदि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर विज्ञापन जगत, हर जगह हमें एक ही सुर नहीं सुनाई देता, युवा शक्ति। हमें बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार हर मीडिया की ओर से ये संदेश हम तक आ रहा है साथियों कि हमारा भारत एक युवा देश है और आने वाले समय में हमारी कार्यशक्ति हो, हमारी ऊर्जा हो या फिर हमारे संसाधन हो, ये सारे के सारे युवा शक्ति के हाथ में रहेंगे और हम दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन साथियों यदि हम आंकड़े देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत की, हमारे देश की जो औसत उम्र है वो इस समय 25 वर्ष है। आप इसे किसी कल्पना के आधार पर कही हुई बात बिल्कुल नहीं समझे, लगभग ढाई दशक बाद यानी हम 2025 की बात करें तब हमारी औसत उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। और साथियों यदि हम हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन में अभी औसत उम्र 34 वर्ष है और आने वाले सालों में ये उम्र बढ़ती ही जाने वाली है। और इस दौरान हमारे आसपास के जितने देश हैं उन सभी में औसत उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जाने वाली है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमारा देश युवा है। तो साथियों बहुत सारे दूसरे भी आंकड़े हैं, उनकी बात करना इस समय बहुत जरूरी नहीं है। और इन आंकड़ों से होना क्या है, मुझे एक चीज बताइए कि हमारा देश यदि युवा है तो क्या वास्तव में हम एक युवा देश की भांति यहां के नागरिक को पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में इस तरीके से जी रहे हैं जैसे एक युवा देश को जीना चाहिए? बहुत सारे सवाल इस समय हमारे मन में हैं और बहुत सारी दुविधाएं हमारे युवा के सामने हैं। हम ये देख सकते हैं साथियों कि कितनी सारी दुविधाओं के बीच में जीता हुआ युवा आज प्रगति भी कर रहा है। यही युवा अपने परिवार के साथ में संघर्ष भी कर रहा है क्योंकि सामाजिक मान्यताएं इतनी ज्यादा बदल रही हैं कि जिसके चलते एक सामान्य जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है। साथियों परिवार का क्षेत्र हो, आपके कार्य का क्षेत्र हो या फिर देश को लेकर आगे बढ़ने जितना बड़ा सवाल हो, यदि हमारा देश युवा है, यदि हमारा परिवार युवा है, यदि हमारी सोच युवा है, तो कहाँ है वो ऊर्जा जो एक युवा भारत में, एक युवा राष्ट्र में होनी चाहिए। आज की तारीख में यदि हम प्रौढ़ों की बात करें या वृद्धों की बात करें, तो प्रत्येक का मत युवाओं को लेकर हमेशा नकारात्मक ही है। युवाओं की बात किसी भी प्रौढ़ से कीजिए तब उन्हें समझता ही क्या है, वृद्धों से कीजिए तब उनके मुंह से अपशब्द ही निकलते हैं। साथियों, यदि आप युवा शक्ति के हाथ में किसी प्रकार के अधिकार ही नहीं देंगे, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं देंगे कि आपको ही आने वाले समय में देश की बागडोर संभालनी है, आपको जिम्मेदारी उठानी है और हमारा आप पर विश्वास है, इसके बिना हमारे युवा को ऊर्जा कैसे मिलेगी। चलिए मान लेते हैं कि हमारी युवा शक्ति धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का है? पारिवारिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो युवाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वे अध्ययन के लिए घर से बाहर जाना चाहे तो उन्हें मनाही, यदि वे किसी दूसरे क्षेत्र को चुनकर अपना भविष्य बनाना चाहे तब उसमें मनाही, विवाह अपनी मर्जी से करना चाहे वहां पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो साथियों, ऐसे में जब हमारे युवा को एक सामान्य जीवन ही नहीं मिल पा रहा है, तब युवा भारत होने के बावजूद क्या हम इसी गति से आगे बढ़ पाएंगे जैसे कि कोई एक युवा देश आगे बढ़ता है? सुविधाएं चाहिए हमारे युवाओं को, और वो सुविधा आप दे सकते हैं अपने विश्वास को देकर। साथियों, हम सभी अपने जीवन में जब प्रौढ़ हो जाते हैं और युवावस्था को मुड़कर देखते हैं, तब ऐसा लगता है हमने बहुत सारी गलतियां की। हमें यह भी लगता है कि हमने कुछ गलत निर्णय लिए। हमें यह भी लगता है कि यदि हम कुछ सही निर्णय ले लेते तो हमारा अभी का जो जीवन है वो और बेहतर हो जाता। और ये जो हमारा अनुभव होता है अपने जीवन को लेकर, ये अनुभव हम हमारे युवा साथियों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस परिस्थिति में हमारी युवावस्था गुजरी है और जिस परिस्थिति में हमारा आज का युवा जी रहा है, दोनों परिस्थितियां बहुत अलग हैं। अब आप ही सोचिए कि आप यदि प्रौढ़ हैं और आप जब युवा थे, उस समय यदि आपके माता पिता किसी चीज को लेकर आपके साथ सलाह मशविरा करते या फिर आपको सलाह देने लगते, तो क्या आपको वो चीज अच्छी लगती? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। साथियों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी राह खुद बनाना चाहता है, वो खुद गिरकर ही अनुभव लेना चाहता है। सामने वाले को गिरता देखकर उसे वो चोट उतनी गहराई से महसूस नहीं होगी, आगे चलकर उसके निर्णय गलत होंगे। मेरा ये कहना नहीं है कि आप अपने युवा होते बच्चों को या फिर अपने परिवार के युवाओं को कुछ ना सिखाएं, लेकिन सबसे पहली बात यह है साथियों कि अनुभव हमें जो सिखाता है उससे अच्छी कोई पाठशाला नहीं होती। हमें ये देखना होगा कि हम अपने युवा साथियों की जो शक्तियां हैं उनको पहचानने में उनकी मदद करें। आज का युवा दुविधा में है। आज का युवा अपने प्रत्येक प्रश्न को लेकर आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप उत्तर नहीं जानते। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो आप उनके प्रश्नों को टालते हैं। ऐसे में हमारे युवा की दुविधा, उसका भ्रम और ज्यादा बढ़ता है। तो साथियों, हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। कहा जाता है कि मानव संसाधन पूरे विश्व में सबसे बड़ा संसाधन है, और ऐसे में इस समय हमारा भारत देश सबसे ज्यादा संपन्न है। तो चलिए इस संपन्नता का लाभ उठाया जाए। हमारे आसपास की जितनी भी युवा शक्ति है उनको हमें संगठित करके ये बताना है कि उनकी शक्तियां क्या है। दरअसल होता यह है, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में युवाओं की कमियां निकालने की प्रतिस्पर्धा चलती है। युवाओं ने क्या गलत किया, उन्होंने किस तरीके से कोई चीज गलत बोली, उन्होंने कौन से निर्णय गलत लिए, या फिर उन्होंने किस तरीके से गलत बातें कही, या फिर उनका आचरण किस तरीके से गलत है, उनकी बोलचाल गलत है, उनका व्यवहार गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन ऐसा करने से क्या युवाओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा? आप स्वयं ही देख लीजिए। यदि आप बच्चों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी गलतियां ही दिखाते हैं, तो बच्चों को न सिर्फ खुद की गलतियां दिखती है, बच्चे दूसरों में भी सिर्फ गलतियां ही ढूंढना सीखते हैं। साथियों, ये गलती हम सभी कर रहे हैं। मान लिया हमारा भारत युवा है, लेकिन हमारे युवा को हम क्या पोषण दे रहे हैं? हमारे युवा को आज चाहिए सकारात्मकता का पोषण। आप उसे ये मत बताइए कि तुम्हारा आचरण गलत है, आप उसे ये बताइए कि तुम्हारा आचरण यदि इस प्रकार का हो तो तुम और ज्यादा प्रगति कर सकते हो। साथियों, ऊर्जा आपको हमेशा किसी स्थान से ऊपर ले जाती है, लेकिन यही यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तब आपको नीचे ही ले जाएगी। हम सभी मान लिया कि अपने अनुभव के चलते युवाओं को कम से कम तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो आजकल प्रत्येक स्थान पर हमें देखने को मिलता है कि युवा बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। लेकिन क्या आपने उन्हें अपनी जान की परवाह करना सिखाया था? बिल्कुल नहीं। क्या आपने उन्हें अपने सकारात्मक पक्ष को देखकर, उसे सराहकर, उसे इतना ऊपर उठाना बताया था जिसके चलते वो अपने आप को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाता? बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा से उन्हें ये कहा है कि तुम ऐसा नहीं करो, बहुत तेज बाइक नहीं चलाओ नहीं तो गिर जाओगे। आप उन्हें ये बताइए ना कि आप बहुत अच्छे से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जीवन में एक सही नजरिया होना एक युवा को सही दिशा देता है, और ऐसे में आज हमारे भारत देश को जरूरत है एक सही नजरिए की। हमारे आसपास के उदाहरण यदि हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति ये बात करता है कि युवाओं पर बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि चलिए अब हम युवाओं पर से दबाव हटाने के लिए हम कुछ कोशिश करें। क्या आपने कभी मदद का हाथ बढ़ाया है अपने किशोर होते बच्चे की ओर? क्या उसे ये पूछा है कि उसे क्या अच्छा लगता है? क्या उसे कभी जीवन में आने वाले क्षणों को लेकर या उसके लक्ष्यों को लेकर कभी बातें की हैं? नहीं। आपने हमेशा से यही देखा होगा कि वो किस समय घर आ रहा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो किन दोस्तों के बीच घूम रहा है। क्या आपने स्वयं कभी उसके लिए एक अच्छा दोस्त बनने की पहल की? एक सही अभिभावक बनने के लिए ये कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है साथियों यहाँ पर, लेकिन हाँ, यदि हमारे युवा साथियों के माता पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, युवाओं के मन में सिर्फ आक्रोश नहीं है, युवाओं के मन में एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा चाहिए, और वो दिशा यदि नकारात्मक रूप में मिलती है तब फूटता है उनका आक्रोश, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आपकी ओर से एक सही मार्गदर्शन चाहिए कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े। साथियों, भले ही आपके आसपास आपके घर में कोई युवा ना हो, लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजाना के जीवन में यदि युवा साथी आपसे जुड़ रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप सकारात्मकता का बीज उनमें बोएं, क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश को सकारात्मकता की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश युवा है। आने वाले समय में जब ढेर सारी तकनीकी शक्तियां इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाली हैं, ऐसे में ये युवा शक्ति ही आपको आगे लेकर जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, तकनीकी दृष्टि से हमारा जीवन कितना समृद्ध हो गया है, और इस सभी के पीछे कोई न कोई युवा शक्ति ही तो काम कर रही है। यदि हम एक अध्ययन की बात करें साथियों, तो हमारे सामने जो भी महान चित्रकार है, उस महान चित्रकार ने 30 से 35 की उम्र में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर लिया था। हमारे बीच जितने भी महान लेखक हैं, उन्होंने 40 वर्ष के अंदर की उम्र में अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऐसी साहित्यिक कृति जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, उसका निर्माण कर लिया था। यदि हम कलाकारों की बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें, हम फिल्म के नायक नायिकाओं की बात करें, तो मुझे बताइए कोई नाम जिसने 40 वर्ष के बाद की उम्र में अपने जीवन को शुरू किया हो। साथियों, बहुत सारे अपवाद हमें जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है उससे परे हम नहीं जा सकते। जीवन के सर्वश्रेष्ठ काम को करने के लिए जो समय है, वही स्वर्णिम समय इस समय हमारे देश को मिला हुआ है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जीवन का सर्वाधिक स्वर्णिम समय है, हमारे देश के लिए सबसे अच्छा काल है। और ऐसे में यदि हम नकारात्मकता का ही पोषण करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए, आपके भविष्य में क्या रखा हुआ आने वाला है। साथियों, सिर्फ हमारे युवाओं को सुविधा दे देने से, उन्हें मार्गदर्शन दे देने से, उनकी तारीफ कर देने से, या फिर उन्हें एक सही ऊर्जा दे देने से यदि हम सबका जीवन संवर सकता है, तो ये काम करने में हिचक कैसी। हमारे युवा संवाद चाहते हैं, वो आपसे कटना नहीं चाहते। अब स्वयं सोचिए ना कि ऐसे कौन से कारण है जिसके चलते एक उम्र हो जाने के बाद में बच्चे अपने अभिभावकों से दूर होने लगते हैं। दरअसल 14-15 की उम्र में आपका बच्चा जब स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, ऐसे में आपको एक प्रकार का भय सताता है कि कहीं ये बच्चा आपके नियंत्रण से बाहर तो नहीं चला जाएगा। अब तक अपने प्रत्येक निर्णय के लिए आपके ऊपर निर्भर रहने वाला आपका बच्चा यदि स्वयं के निर्णय स्वयं ले लेता है, तब उसे चाहिए होती है आपकी ओर से शाबाशी। लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है एक फटकार, उसे मिलती है एक डांट। उसे ये समझाया जाता है कि उसे अभी समझता ही क्या है, उसने आपसे नहीं पूछा, इसके कारण आप दुखी हैं। इस प्रकार का व्यवहार आप अपने बच्चे को दिखाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन साथियों, आप स्वयं सोचिए, वो बच्चा अपने जीवन में पहली बार स्वतंत्र हुआ, उसने अपने जीवन का पहला निर्णय स्वतंत्र होकर अपने एक सही व्यक्तित्व के साथ में लिया है। वो अब युवा हो रहा है और आगे चलकर वो अपने आप को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देख रहा है। वो आज खुश है, वो आज सफल है और अपनी सफलता को आपके साथ बांटने के लिए, इस निर्णय लेने की बात को बांटने के लिए आपके समक्ष आया है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय आपको देख ही रहे हैं। आप इस समय अपने बच्चे को नहीं, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। आपका अहंकार, आपका स्वयं का व्यक्तित्व, उस बच्चे की निर्भरता, ये सारी चीजें खंडित हो चुकी हैं। तो साथियों, यदि हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर होना चाहता है तो उसे ऊर्जा दीजिए। यदि हमारे देश का युवा सकारात्मक होना चाहता है तो उसे सही विचार दीजिए, उसे मार्गदर्शन दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। बार बार उसे ऐसी बेड़ियों में जकड़कर मत रखिए जिससे वो आप पर ही निर्भर रहे। साथियों, यदि आपको पसंद है कि कोई आपके नियंत्रण में रहे, तो क्या आप चाहेंगे कि आप पर कोई नियंत्रण करे? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, और जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए इतना समय हो गया है और अब हमारे देश का युवा समय हमारे सामने है, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि युवा शक्ति को अपने विश्वास का उपहार दे। इसी के चलते हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य आगे आ सकता है।
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत जिसके बोल हैं, स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर।
के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया, स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया। आकाश की अनुपम सुंदरता से पुत्र ने माँ को सजाया, पुत्र ने माँ को सजाया।
तू है स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी माँ, तू है स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी माँ।
स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया। हम मानवों की आशा किरण, आए हैं हम सब तेरी शरण। हम मानवों की तू आशा किरण, आए हैं हम सब तेरी शरण, सुन ले पुकार तू वरदानी, सुन ले पुकार तू वरदानी।
हे स्वर्ग की रानी माँ, हे जगत की दुलारी माँ, हे स्वर्ग की रानी माँ, हे जगत की दुलारी माँ।
स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया, फसी तेरी संतान, स्वर्ग की राह तू हमको दिखा। संकटों में फसी तेरी संतान, स्वर्ग की राह तू हमको दिखा। हे जगदम्बे स्वर्ग रानी, हे जगदम्बे स्वर्ग रानी।
हे स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी माँ, हे स्वर्ग की रानी माँ, तू है जगत की दुलारी माँ।
स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर पिता ने मरियम को बिठाया, आकाश की अनुपम सुंदरता से पुत्र ने माँ को सजाया, पुत्र ने माँ को सजाया।
हे स्वर्ग की रानी माँ, हे जगत की दुलारी माँ, हे स्वर्ग की रानी माँ।
साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत, जिसके बोल थे स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rvahindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से rva मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satyaswar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवी मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का, आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।
Hail Mary, full of